बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन रहे हैं, पर्वतों को भी तोड़कर, उनको भेद कर रास्ता बनाया जा रहा है। ये किसका काम है? मशीन का। आदमी अपने दो पैर और दो हाथों से कब तक काम करेगा? किसी का सहारा बहुत आवश्यक होता है। मशीन का आविष्कार हुआ और इस आविष्कार ने मनुष्य को भौतिक जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं चाहिए उन सुविधाओं को उपस्थित किया। ये सब मशीन का काम है। मशीन है और आदमी नहीं है तो मशीन अकेला रास्ता बना करके देगा क्या? मशीन स्वयं अपने लिए रास्ता बनाए देखेंगे, खुद के लिए। कहीं गड्ढे में गिर न जाऊं, मैं टूट न जाऊं, इसके लिए मशीन स्वयं के लिए रास्ता बना सकता है क्या? दूसरे के लिए सोच समझ करके दूसरे के उपकार के लिए बना सकता है क्या? नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? कि वो बना ही नहीं सकता। कारण क्या होगा? उसमें ज्ञान नहीं है। और मनुष्य में ज्ञान है। मशीन को किसने बनाया? मनुष्य ने ही बनाया है। मशीन ने हमें बनाया है क्या? नहीं। भविष्य में भी विज्ञानी लोग मशीन के माध्यम से जीवों की उत्पत्ति कर लें, ये कभी होने वाला नहीं है। मनुष्य मशीन को तैयार कर सकता है, परंतु ऐसी मशीनें आ जाए जो मनुष्यों को तैयार कर ले, ये कभी संभव है क्या? नहीं है। इसलिए पुद्गल का लक्षण अलग है और जीव का लक्षण अलग है, ये कल बताया था। जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान और दर्शन, जानना ज्ञान के द्वारा होता है, देखना दर्शन के द्वारा होता है। जानना और देखना जैसे ज्ञान का लक्षण है, तो पुद्गल का लक्षण इससे विपरीत निश्चित होगा। जिसमें ज्ञान और दर्शन नहीं है, तो इससे विपरीत कुछ न कुछ होना ही चाहिए। तो वो क्या है? पुद्गल का लक्षण स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चार लक्षण पुद्गल के हैं। इनका इनका उपकार जीव के ऊपर हो सकता है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाला जो पुद्गल है, ये पुद्गल का उपकार जीव के ऊपर हो सकता है। लेकिन जीव पुद्गल के ऊपर क्या उपकार करें? और वह उपकृत हो सकता है क्या? उस उपकार के सुख की अनुभूति कर सकता है क्या? मशीन टूट गई तो अवश्य हम उसको रिपेयरी कर लेते हैं, ले जा करके दुकान में दे देते हैं, तो दुकानदार मशीन को रिपेयरी करके हमारे लिए दे देता है और हम पुनः उसके माध्यम से उपकृत होते हैं। टूट गई थी, ठीक हो गया, अब मशीन ठीक है, हम उससे काम लेने लग गए, हमारे ऊपर मशीन का उपकार पुनः होने लगा। पहले भी होता था, अब और होने लगा। हमने मशीन को सुधार किया तो क्या उपकार किया? बोलो, मशीन का हमने उपकार किया? नहीं किया। जिसके ऊपर उपकार हो सकता है, उपकार की अनुभूति कर सकता है, उसके ऊपर ही हम उपकार कर सकते हैं। यद्यपि मशीन को हमने ही ठीक किया, अपने हमने धन दिया तो उन्होंने रिपेयरी करके दे दिया, ये हमारा काम हो गया, परंतु हमारे उस उपकार को क्या मशीन ने अनुभव में लाया, उसको सुख मिला? नहीं मिला। इसलिए वह पुद्गल है। अगर कोई व्यक्ति होता इसी जगह और हमारा काम करता, हमारे काम का है, अपने ऊपर बहुत उपकार कर सकता है, उस व्यक्ति को कुछ हुआ है, दुखी हुआ है, तो उसके दुख को दूर करने के लिए यदि हम उनका उपचार करते हैं, उनको उपकार करते हैं, उनके लिए जो सुविधाएं चाहिए उन सुविधाओं को करके देते हैं, तो वह व्यक्ति भी हमारे द्वारा उपकृत हो सकता है और उपकृत होने पर हमारे ऊपर उलट वो उपकार कर सकता है। एक व्यक्ति व्यक्ति के बीच में उपकार चल सकता है, लेकिन मशीन और मनुष्य, इन दोनों के बीच में क्या उपकार हो सकता है? लेन देन अनुभूति का, सुख दुख का, नहीं हो सकता। इसलिए इसमें से एक पुद्गल है और एक जीव है, एक पुद्गल है और एक जीव है। पुद्गल पुद्गल है, जीव जीव है। यह तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेना भी सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान किसका नाम? सच्चा ज्ञान। तत्व को जानने का नाम ही सम्यक ज्ञान है। यह सम्यक ज्ञान पुद्गल को उत्पन्न होता है क्या जीव को? जीव को। पुद्गल अलग है, जीव अलग है। ये पुद्गल जान रहा है क्या जीव जान रहा है? जीव जान रहा है। तो महत्व पुद्गल का है क्या जीव का है? हम सब जीव हैं क्या पुद्गल हैं? पूछने पर उत्तर कौन दे रहा है? जीव दे रहा है। क्या शरीर दे रहा है? हाँ, ये बात अलग है। जीव है ये कहने के लिए शरीर भी आवश्यक है, पर शरीर दे रहा है क्या उत्तर? कौन दे रहा है? जीव दे रहा है। वो कहाँ बैठा है? शरीर में बैठा है। हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो किसको पूछ रहे हैं? शरीर से पूछ रहे हैं कि जीव से पूछ रहे हैं? जीव से पूछ रहे हैं। आप सभी अपने अपने गाड़ी में बैठे, हमें विश्वास है, इसलिए पूछ रहे हैं, शरीर रूपी गाड़ी में। और सुनाई दे रहा है हमारा प्रश्न तो किसको सुनाई दे रहा है? जीव को, आत्मा को सुनाई दे रहा है। जिसको सुनाई देता है वो आत्मा है, जो देख रहा है वो आत्मा है, जो विचार कर रहा है वो आत्मा है। आत्मा कहाँ है, कैसे पहचाने, इसके लिए क्या उत्तर? हाँ, जानने और समझने की शक्ति के साथ साथ जो वर्तमान में समझता जानता हुआ जा रहा है, प्रत्येक समय सुख दुख की अनुभूति करता है, हर्ष विषाद जिसको हो रहे हैं, वही तो आत्मा है। आत्मा कहाँ है, पूछने वाला ही आत्मा है। हम आत्मा को नहीं मान, आत्मा होकर के आत्मा को नहीं मानते कई लोग, इतना अज्ञान रहता है उनके पास, इतना अज्ञान कि आत्मा होकर के ही आत्मा को नहीं मानते। हम आत्मा को नहीं मानते, शरीर को मानते हैं। फिर आत्मा को नहीं मानोगे तो बोलोगे कैसे? जो बोल रहा है वही आत्मा है, जो सोच रहा है वही आत्मा है, जो सुन रहा है वही आत्मा है, जो विचार कर रहा है वही आत्मा है। आत्मा तो वही है, अलग से आत्मा को कहाँ मानना है अपने को। इसी आत्मा की महिमा है जो वह बड़े बड़े काम कर सकता है। इसी आत्मा ने बड़ी बड़ी मशीनों को खोजा और उसके माध्यम से स्वयं उपकार उपकृत होने लगा, मशीन इनके ऊपर उपकार करने लगा, और ये मशीन के ऊपर उपकार करने की योग्यता शक्ति रखते हैं लेकिन वो उपकृत होने की शक्ति नहीं रखता। इसलिए उपकार करना ये केवल उसी द्रव्य पर हो सकता है जो द्रव्य चेतन है। अपन चेतन है क्या अचेतन है? अपन चेतन है। हम ही यदि अपने को न जानते हुए, अपनी चिंता न करते हुए, अपने स्वार्थ के पीछे हम न पड़ेंगे तो हम कौन हैं? हमारे हित के पीछे हमारे सुख दुख हैं, इनको दूर करना है और हमको अच्छा बनना है, अच्छा होना है, इस प्रकार हम ही विचार नहीं करेंगे अपने बारे में तो हम कैसे लगेंगे? मशीनवत लगेंगे क्या मनुष्यवत लगेंगे? मशीनवत लगेंगे। ये सम्यक ज्ञान किसके लिए है? आत्मा के लिए है कि पुद्गल के लिए? आत्मा के लिए। भगवान ने दिगंबर दीक्षा लेकर त्याग तपस्या करते हुए आठों कर्मों को नाश करके मोक्ष की प्राप्ति कर लिया, तो उन्होंने किसके लिए किया? खुद के लिए किया, स्वयं के लिए किया। उनको क्या समझ में आया होगा ये सब करने के लिए? संसार अनादि है ये तो समझ में आया होगा, और ये संसार के चार गति के चक्र में मेरी आत्मा अनादिकाल से भटक रही है, सुखी दुखी हो रहे, ये तो समझ में आया होगा। ऐसा हमको क्या समझ में नहीं आना चाहिए? और नहीं आ रही है बात समझ में तो उसको मशीन कहेंगे कि मनुष्य कहेंगे? वो मशीनवत हो जाता है। यही बात समझना है। अपन धर्म पढ़ने के लिए बैठे हैं, सम्यक ज्ञान लेने के लिए बैठे हैं, विशेष कुछ बनने के लिए बैठे हैं, तो हम क्या थे और क्या बनना है ये प्रश्न हमारे सामने क्या नहीं है? है, ये प्रश्न सबके सामने है। हम पहले क्या थे और हमको बनना क्या है, ये प्रश्न हमारे सामने है। और इसी प्रश्न का उत्तर खोज करके उस प्रश्न के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है उत्तर, उस उत्तर को जीवन में उत्तरोत्तर पचाना है। सम्यक ज्ञान को उत्तरोत्तर पचाना है, पकाना है, उससे हमें सुख पाना है। सम्यक ज्ञान हमको सुख देता है। ज्ञान नहीं होने के कारण से ही हम भटक रहे हैं ना। मनुष्य मशीन कब कहलाता है? अज्ञान अवस्था में या ज्ञान अवस्था में? अज्ञान अवस्था में। हमारे पास अज्ञान रहेगा, ज्ञान लेने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम मशीन बन जाएंगे, और ज्ञान आता जाएगा, बढ़ता जाएगा तो हम मनुष्य बनते जाएंगे, और मनुष्य बनेंगे। मशीन जो है मनुष्य के द्वारा आविष्कृत हुआ है, मशीन मशीन के द्वारा नहीं बना है। एक मशीन दूसरे मशीन को तैयार कर सकता है? नहीं कर सकता। आप कहेंगे मशीन मशीन को ही तो बनाता है, एक पार्ट दूसरे मशीन ने तैयार किया, फिर ऐसे कई मशीन मिलकर के कई पार्ट्स तैयार हो गए और उनको जोड़ करके कार गाड़ी जो बनती है ना, कार गाड़ी एक ही कारखाने में सभी पार्ट्स तैयार नहीं होते, मालूम है आप लोगों को। उसके जितने पार्ट्स हैं, नट पुलट सभी एक एक पार्ट्स अलग अलग कारखाने हैं, और अलग अलग कारखाने में मशीन ने उनको तैयार किया, पर उन कारखानों में काम करने वाले मशीनों को किसने तैयार किया? मनुष्य ने तैयार किया। अगर मनुष्य न होता, क्या मशीन होता? नहीं। इसलिए हमें इस उदाहरण के माध्यम से ये प्रेरणा लेना है, हम एक मनुष्य हैं और हम एक आत्मा हैं, शरीर हमारा एक साथी है। शरीर को क्या समझोगे? साथी समझो। ये भी हमारा उपकारक है मशीन के समान। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न, ये तत्व तो पहले समझ में आना चाहिए, और सदा ही इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। शरीर मेरा उपकार करने वाला साधन है और मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा बन सकता हूँ, भगवान बन सकता हूँ। मैं यदि अपने कर्मों को नाश करूँगा तो भगवान बन पाऊँगा, और नाश नहीं करूँ तब भगवान भी नहीं बन पाऊँगा। नाश कैसे होंगे? कर्म कैसे होंगे? क्या उपाय है? कर्मों को नाश करने का उपाय रत्नत्रय धारण करना। भगवान ने जिसको धारण किया था, जिस पथ पर वे चले थे, उसी पथ का अनुसरण हमें करना पड़ेगा। आज न कल करना ही पड़ेगा। अनंत काल भी व्यतीत हो जाए तो मार्ग तो एक ही है, रत्नत्रय। उसमें क्या क्या आ गए? रत्नत्रय में सम्यक दर्शन आ गया, सम्यक ज्ञान आ गया, सम्यक चारित्र आ गया। अपन को सबसे पहले क्या प्राप्त करना है इन तीन में से? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान आते ही क्या प्राप्त होता है? सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान पहले प्राप्त होता है ऐसा नहीं, ज्ञान आने पर जो पढ़ाया जा रहा है यह द्रव्य श्रुत है। द्रव्य श्रुत, द्रव्य श्रुत के माध्यम से भाव श्रुत तक पहुंचना है। द्रव्य श्रुत यानी जो पढ़ाया जा रहा है ज्ञान है, दूसरे के माध्यम से जो हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं अपने उपकार के लिए, स्वयं के उपकार के लिए, उसको द्रव्य श्रुत कहते हैं। इस द्रव्य श्रुत के माध्यम से हमें भाव श्रुत तक जाना है भीतर। जो योग्य चिंतन करता है, समीचीन चिंतन कर सकता, ऐसे ज्ञान को जगाना है। भाव श्रुत को जगाने का उपाय है द्रव्य श्रुत, और द्रव्य श्रुत जो होता है वो गुरुओं के माध्यम से, अरहंत भगवंतों के माध्यम से हम इकट्ठा कर लेते हैं। द्रव्य श्रुत अक्षरात्मक होता है, अर्थात्मक होता है, लेकिन अक्षर और अर्थ ये दोनों मिलकर के शब्द बनते हैं। शब्द अक्षरात्मक हैं, शब्द बनते हैं, शब्दों में अर्थ छिपा रहता है। उसको पढ़ते ही कुछ न कुछ अपने को ज्ञान होता है। उस ज्ञान के होने के पश्चात भावों की उत्पत्ति होती है। ऐसा होता है, जैसे हमने कहा जीव, ऐसा कहा तो आपको कानों में जीव यह शब्द आया। ये शब्द द्रव्य श्रुत है क्या भाव श्रुत है? ये द्रव्य श्रुत है। शब्द है, अक्षर है, ये सभी द्रव्य श्रुत कहलाते हैं। ये ध्वनि के माध्यम से आपके कानों तक पहुंचाए जाते, उपदेश के द्वारा अपने कानों तक पहले हमारे कानों में द्रव्य श्रुत आता है। द्रव्य श्रुत आते ही भीतर की आत्मा कानों से सुन करके वो क्या करता है? जीव ऐसा कहा, ये क्या है, विचार करना प्रारंभ करता है। तो उसने विचार किया, जीव यानि जो जी रहा है, जीता था और जिएगा, उसका नाम जीव है। ऐसा अर्थ बोध होता है। जीव यह शब्द सुन करके जो जीता था, जी रहा है और जिएगा, ऐसा अर्थबोध होता है। इस अर्थबोध के पश्चात हमारा परिवर्तन प्रारंभ होता है। परिवर्तन आ गया, अर्थबोध हो गया और आप विकास की ओर बढ़ने लगे तो समझना भावश्रुत की उत्पत्ति भीतर हो चुकी है। सम्यक ज्ञान शिविर में हम बैठे हैं, 4 महीने के बाद भी हम क्या ऐसे ही रहेंगे जैसे आज हैं, पूर्व में थे ऐसे ही रहेंगे? क्या कुछ परिवर्तन आएगा? अवश्य परिवर्तन आएगा। क्या आएगा? वो अपने हित के लिए जो चाहिए वो आएगा। क्या कुछ दूसरा ही आएगा जो हमारे लिए दुख का कारण हो, परेशान का कारण हो, ऐसा कुछ आएगा क्या? कौन सा परिवर्तन अपने जीवन में आएगा जो हमारे लिए हित के लिए हो? जो काम भगवान ने किया है स्वयं के लिए, खुद के लिए किया था, वो जो खुद के लिए करने के लिए चल पड़े थे, वो कौन सा ज्ञान? भाव श्रुत है या द्रव्य श्रुत है? वो भाव श्रुत है। भाव श्रुत के माध्यम से कल्याण होता है। साक्षात कल्याण जो होगा वो भाव श्रुत है। और द्रव्य श्रुत साक्षात कल्याण के लिए, भावों को जगाने के लिए द्रव्य श्रुत इकट्ठा किया जाता है। कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह एकदम फ्रेश होकर के 5:30 बजे आकर के अपन यहाँ बैठ रहे हैं। 3 लोक के नाथ भगवान महावीर ने जो अपने जीवन काल में 30 साल तक उपदेश दिया था, उस उपदेश को सुन रहे हैं और उसमें से कुछ करने के लिए, अपना हित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 5:30 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठने वाले 5:30 बजे उत्साह के साथ उठकर यहाँ पर बैठ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। सम्यक ज्ञान में ये रुचि कहलाती है कि क्या? रुचि है ना, रुचि है तभी तो आ रहे हैं अपन। ये रुचि मशीन की है कि आत्मा की है? आत्मा की है। मशीन में कुछ न रुचि है न अरुचि है। मशीन को तो हम ये समझते हैं और समझना चाहिए, मशीन हमारा उपकारक है। मशीन को हमने जन्म दिया है, वो हमारे लिए उपकार करेगा। पर हम यदि उपकार करना चाहे तो भी मशीन उपकृत नहीं होगा, उस उपकार के सुख को वो अनुभव में नहीं ला सकेगा, इसलिए उपकृत नहीं होगा। मशीन की रिपेयरिंग की, क्या उसको सुख मिला? नहीं। मशीन को बिगाड़ दिया, क्या उसको दुख हुआ? नहीं। उसको न सुख हुआ न दुख हुआ। इसलिए पुद्गल पर हमें उपकार नहीं करना है, पुद्गल के द्वारा हमें उपकृत होना है। शरीर पुद्गल है, मशीन भी पुद्गल है। आप जो खाते हैं रोज रोज भूख लगने पर, वह भोजन भी पुद्गल है, पानी पुद्गल है। पानी क्या करता है? प्यास बुझाता है। भोजन क्या करता है? भूख मिटाता है। और भूख मिटने पर, प्यास को दूर करने पर, प्यास की पीड़ा को दूर करने पर सुख दुख की अनुभूति किसको हुआ? आत्मा को हुआ। शरीर को कैसे होगा सुख दुख की अनुभूति? शरीर को कैसे हो गया हुआ? अगर शरीर को ऐसा सुख दुख की अनुभूति होती है तो मरने के पश्चात इस शरीर को खूब पिलाओ पिलाओ, खिलाओ पिलाओ, सुख दुख की अनुभूति होती है कि देख लो? नहीं होती। तो ये सुख दुख की जो भूख प्यास की अनुभूति होती थी वो किसको? आत्मा को। इसी आत्मा को हमें समझना है। भगवान महावीर ने संसार का त्याग किया क्या समझने के लिए? शरीर को समझना था या आत्मा को समझना था? आत्मा को समझना था। संसार में उपाधि भूत वस्तु तो एक ही है, आत्मा, बाकी सब निस्सार है। आत्मा ही समय सार है, बाकी सब निस्सार है। और इसी का चिंतन बार बार करना चाहिए, अपने आप को संसार में भूलना नहीं चाहिए। अपन बहुत भूल जाते हैं ना, आत्मा को भूलकर शरीर का चिंतन शुरू होता है और संसार की कार्य क्रियाकलापों का चिंतन शुरू होता है। ऐसा होता है कि नहीं? बहुत बार होता है। आत्मा को कितनी बार याद कर लेते हैं संसार के कार्य करते करते। जिसको देखते हैं उसमें उलझ जाते हैं, जिसको देखते हैं उसी में उलझ जाते हैं, जिसको देखते हैं उसी में उलझ जाते हैं। उलझन ही रहता है, आत्मा को भूल करके ही हम काम करते रहते हैं। इस आत्मा को ही नहीं भूलने का नाम सम्यक ज्ञान है। आत्मा को न भूलने का नाम सम्यक ज्ञान है और आत्मा को भूलने का नाम मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान दुखदायक है और सम्यक ज्ञान सुखदायक है। कितना अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है ना? बहुत आनंद आ रहा है क्या, कम आ रहा है? होटल वाले को पूछना पड़ता है कैसा है हमारा माल, कैसी है हमारी जलेबी, ताकि ग्राहक कल भी हमारे होटल में ही आ जाए। होटल वाला ऐसा सोचता है। इसी ज्ञान को कोई दुनिया में देने वाला नहीं है, बहुत दुर्लभ है। इसी ज्ञान को देते नहीं, लोग नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि वो स्वयं को भूल चुके हैं, इसलिए क्या देंगे? आत्मा ही आत्मा को भूल सकता है क्या? नहीं भूल सकता है, तो वो स्वयं भूल चुके हैं, तो कौन ऐसा ज्ञान देगा? और इस आत्मा की बात को सुनते समय बहुत टिपटॉप बैठना चाहिए, प्रमादी होकर के कभी भी आत्मा की बात नहीं सुनना, आलसी बनकर के नहीं सुनना है, टिपटॉप होकर के बैठना चाहिए। आत्मा की बात आ रही है और कुछ अच्छी बात मिलेगी और अपन उसके माध्यम से परिवर्तित होंगे। आत्मा को आत्मा में परिवर्तन करके आत्मा को क्या बनाना है? अपने को परमात्मा बनाना है। परमात्मा बनाने के मार्ग पर यदि ये खड़ा हो गया तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जीवन में आ गया। और ये आ गया तो कर्मों का संवर भी होगा। कर्म आएंगे नहीं, नए कर्म नहीं आएंगे, और पुराने कर्म जो आए हुए थे और वो हमारे अंदर बैठे हैं उनकी निर्जरा भी होगी। एक तरफ संवर होगा और पुराने आए हुए कर्मों की निर्जरा होगी, और क्या होगा? वर्तमान में जो कर्म अशुभ कर्म बंधना चाहिए, अशुभ कर्म का बंध रुक जाएगा, ये भी कार्य होगा। और पहले जो अशुभ कर्म हमारे बंधे थे उनकी निर्जरा होगी। इतना बड़ा काम होगा अगर हमारे जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नामक धर्म आ गया। और दुनिया में तीन लोक में धर्म तो एक ही है, इसी का नाम धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही धर्म है सब संसारी प्राणियों के लिए। बहुत सारे धर्म नहीं होते, धर्म एक ही होता है, उस ओर सबको बढ़ना पड़ता है। और भगवान भी एक ही होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, बहुत प्रकार के नहीं होते। उनका जो स्वरूप है स्वरूप की अपेक्षा से, उनका जो लक्षण है लक्षण की अपेक्षा से, उनका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन की अपेक्षा से। भगवान का डेफिनेशन एक ही होता है, क्या अनेक होते हैं? एक ही होता है। क्या है वो डेफिनेशन भगवान का? वीतराग, वीतराग। तो हम आत्मा हैं। अपने आत्मा का धर्म कौन सा होना चाहिए? वीतराग या सराग? वीतराग। अपने आत्मा का, आत्मा के धर्म का नाम है वीतराग, और वो वीतराग धर्म अनादिकाल से हमारे पास नहीं रहा। क्या रहा कभी? जब आप जन्मे थे राग थे क्या? वीतराग थे? राग थे। जन्म से लेकर अभी तक रागी हैं कि वीतरागी? रागी। रागी दुखी रहता है कि सुखी रहता है? दुखी रहता है। वीतरागी सुखी रहता है कि दुखी रहता है? सुखी रहता है। वीतरागी आत्मा हर जगह सुखी रहता है, क्योंकि उसके पास वीतरागता धर्म है। उस वीतराग धर्म को धारण करके वो निरंतर सुखी है, निरंतर। ऐसे वीतराग धर्म के प्रति अनुराग जिसको हो, वो मनुष्य बनता है, मशीन नहीं रहता। फिर वीतरागता के प्रति अनुराग करना ही मनुष्यता है। और इसका भेद ही मालूम ना हो, विचार भी ना हो और साधना भी ना हो, साधना करने का प्रयास भी ना हो, तो मशीन है। तो अपन को मशीन रहना है क्या मानव बनना है? मानव बनना है। तो बहुत अच्छी तरह से अपने को सम्यक ज्ञान का अर्जन करना है। ये पुस्तक अगर एक बार भी गुरुओं के माध्यम से अपन ने कानों से सुन लिया इसका उपदेश, और भविष्य में इसका अध्ययन करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान महावीर जहाँ गए हैं वहीं आपकी आत्मा भी पहुँच सकती है, पहुँचेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आएगा और वही हमारा कल्याण करेगा। इसमें भी दो प्रकार का धर्म है। ध्यान रखेंगे, धर्म दो प्रकार का। अभी क्या कहा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा। ये धर्म भी दो तरह का है। सराग रत्नत्रय धर्म और वीतराग रत्नत्रय धर्म। सराग रत्नत्रय धर्म और वीतराग रत्नत्रय धर्म दो प्रकार का हो गया। डायरेक्ट हमको वीतराग रत्नत्रय धर्म की उपलब्धि नहीं होती। पहला सराग रत्नत्रय धर्म की उपलब्धि होती है, इसके बाद ही वीतराग होती है। धर्म दो प्रकार का हो गया, सराग रत्नत्रय धर्म, वीतराग रत्नत्रय धर्म। ये भी लिखो कि पहले कौन से इसमें से प्राप्त होती है। कौन सी बताया अभी? सराग। सराग रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति प्रथम होती है, बाद में वीतराग धर्म की प्राप्ति होती है। अब इसका स्वरूप समझाते हैं संक्षिप्त में। ये दो प्रकार के जो धर्म आपने लिखा वो कैसा है देख लो। सराग रत्नत्रय, सराग यानी तीन आ गए, तीनों सराग हैं। सराग सम्यक दर्शन, सराग सम्यक ज्ञान, सराग सम्यक चारित्र, ये सब मिलकर के सराग धर्म हुआ। तीनों धर्म हैं तो तीनों को सराग कहेंगे, तो सराग धर्म हो गया। वीतराग धर्म दूसरा, वीतराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक ज्ञान, वीतराग सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के वीतराग धर्म हुआ, तो ये हो गया। हम वर्तमान में अनादिकाल से क्या थे? सराग कहाँ थे? सराग भी नहीं थे ना वीतराग थे। हाँ, क्या सम्यक दृष्टि आप अनादिकाल से हैं फिर? सराग सम्यक दृष्टि नहीं। क्या थे हम? रागी थे। कैसे रागी? उस रागी के काल में ये तीनों किस रूप में थे? ये तीनों किस रूप में थे अनादिकाल से? ये मिथ्या रूप में थे। हमारा सम्यक दर्शन मिथ्यात्व के रूप में था, ज्ञान मिथ्या ज्ञान था, चारित्र मिथ्या चारित्र था, और ये तीनों मिल करके ये मोक्ष मार्ग थे क्या संसार मार्ग थे? तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र ये संसार का मार्ग है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। उस मोक्ष मार्ग में रहने वाले जो धर्म हैं वो दो प्रकार के, सराग रत्नत्रय और वीतराग रत्नत्रय। हमारे पास न सराग रत्नत्रय रहा न वीतराग रत्नत्रय रहा, हमारे पास तीन ही थे अनादिकाल से। राग सहित, कषाय सहित, लोभ सहित, आकांक्षा सहित, ये हाँ राग तो अनादिकाल से है, किंतु मिथ्यात्व का राग था। मिथ्या ज्ञान होने से राग जो था वो अशुभ के प्रति था। धर्म जो है वो शुभ है, चाहे वो सराग हो चाहे वीतराग हो, धर्मानुराग यदि है तो शुभ राग है, और यदि संसार के प्रति राग है, भोग वस्तुओं के प्रति जो राग होता है उसका राग अशुभ राग। अशुभ राग के काल में हमारे पास मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र रहता है। राग यानी आकांक्षा, लोभ, मोह, आशा, इसको राग, मराठी में राग शब्द का क्रोध ऐसा अर्थ होता है, ऐसा नहीं लेना उसको। काय करनार नहीं, राग करनार नहीं, यानी राग यानी क्रोध नहीं करना, ऐसा आप कहते हैं। लेकिन वो राग शब्द मराठी में तो क्रोध अर्थ है, हिंदी शब्द है ना, ये संस्कृत शब्द भी राग, ये प्राकृत शब्द प्राकृत भाषा में कहो, संस्कृत भाषा में कहो या हिंदी भाषा में कहो, इस शब्द का अर्थ है आकांक्षा यानी आशा। आशा, वो आशा पूरी नहीं होती है तो निराशा छा जाती है। थोड़ा सा इस बात को और क्लियर करते हैं। अनादिकाल से हमारे पास मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र रहा है। सम्यक दर्शन चाहे वो सराग हो वीतराग हो, वो तो रहा ही नहीं अपने पास। सराग सम्यक दर्शन भी अगर होता, सराग सम्यक दर्शन सराग सम्यक ज्ञान सराग सम्यक चारित्र भी यदि आपके पास होता तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तीन भव में और नहीं आठ भव में और कम से कम तीन भव में मोक्ष चले जाते, अभी तक संसार में ही न होते आप। ये सराग धर्म, सराग धर्म की महिमा ये है कि आपको आठ भव के अंदर इस संसार में रहने नहीं देगा, मोक्ष भेजकर सिद्ध परमेष्ठी बना देगा, आपको वीतराग बनाएगा ही वो आठ भव के अंदर। ऐसी व्यवस्था है, इसीलिए तो अपने को प्रयास करना है वीतराग धर्म के प्रति और सराग धर्म के प्रति, प्रयास प्रयत्न हमको करना है। आखिर इस विषय को पढ़कर के अपने को क्या करना है? आत्मकल्याण ही करना है ना, और क्या करना है? आत्मा का कल्याण ही तो करना है। आत्मा का कल्याण मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र में है या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में है? तो वही तो करना है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को करने का ही प्रयास हमें करना है। संसार में तो अनादिकाल से भटके हैं, यहीं अटकना है क्या? नहीं अटकना है। मोक्ष जाना है कि नहीं जाना? तो संकल्प करो कि हमको मोक्ष जाना है और मोक्ष जाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। आप अपने मन में संकल्प कर लो। तो सबसे पहला कौन सा धर्म का लाभ होगा? सराग या वीतराग? सराग होगा। फिर इसके पश्चात कौन किस धर्म का लाभ होगा? वीतराग। वीतराग धर्म का लाभ होने के बाद आपको केवल ज्ञान होगा। और केवल ज्ञान होने के पश्चात ही मोक्ष होगा। पहले आप अरहंत बनेंगे। सराग रत्नत्रय उपलब्ध हो गया तो पहले आप मुनि बनेंगे। हाँ, सराग रत्नत्रय मुनि के पास ही होता है। श्रावक को दो हो सकते हैं, दो होते हैं। चारित्र नहीं होगा, चारित्र नहीं होगा। क्यों? परिग्रह होने से। परिग्रह छोड़ना चारित्र है, और परिग्रह श्रावक छोड़ करके चल ही नहीं सकता, कम कर सकता है, तो उसको प्रतिमा कहते हैं। कम करेगा तो वो प्रतिमा चारित्र है क्या? क्या है? चारित्र तो है, लेकिन एक देश है, एक देश चारित्र है, आंशिक चारित्र है। हाँ, चारित्र बिल्कुल नहीं होता ऐसा नहीं। श्रावक को चारित्र भी होता है, परंतु आंशिक होता है। आंशिक चारित्र रहेगा तो उसके साथ परिग्रह भी रहेगा, और परिग्रह रहेगा तो पाप भी रहेगा। परिग्रह पाप है कि नहीं? परिग्रह को पाप समझते हैं कि नहीं आप लोग? क्या पुण्य समझते हैं? परिग्रह पाप है, धन पाप है, संपत्ति पाप है। कितने प्रकार के परिग्रह हैं? बहिरंग परिग्रह है, 10 प्रकार के। कौन कौन से? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य। यानी क्या? कुप्य कहे तो दे देते हैं, लेकिन कुप्य का अर्थ क्या है? कुप्य, कुप्य यानी कपड़ा, कपड़ा, कापड़, कपड़ा, कुप्य, भांड, भांड यानी क्या? बर्तन, जीवन जीने के ये साधन है। ये 10 वस्तु चाहिए सांसारिक जीवन जीने के लिए, इसके बिना हम जी नहीं सकते। और ये पदार्थ यदि हैं तो ये पाप हैं, 10 पाप हैं अपने जीवन में, 10 पाप। ये 10 परिग्रह ही 10 पाप है। इन परिग्रहों में से आंशिक परिग्रह भी यदि कम करेंगे तो चारित्र आ जाता है, आंशिक चारित्र आएगा। आंशिक पाप त्याग करने से आंशिक चारित्र आएगा, और पूर्ण पाप त्याग करने से पूर्ण चारित्र आएगा। तो पूर्ण चारित्र किसके जीवन में आता है? मुनि बनने के बाद। श्रावक ही मुनि बनता है। मुनि बनने के बाद वह पूर्ण चारित्रवान होगा, और आंशिक त्याग करेगा तो प्रतिमाधारी बनेगा, तो आंशिक चारित्र आएगा। ऐसा समझ में आ रहा है गणित मोक्ष मार्ग का? बस यही गणित अपन ने बहुत समय से नहीं समझा, इसी को भूल करके सांसारिक कार्य करने में उलझते रहे। इसकी चर्चा तक नहीं हुई, इसका ज्ञान तक नहीं हुआ, और हम अटकते रहे। और धर्म किया भी कितना किया, मंदिर आए, 4 चावल रहते हैं ऐसा, एक थोड़ा सा चढ़ा देते हैं, नमस्कार करते हैं, रवाना कर देते हैं अपने घर को। बस धर्म भी हमने किया तो क्रियाकांड के रूप में किया, उसमें भी सोच समझ करके नहीं किया कि ये चावल क्यों चढ़ाते हैं, ये भी विचार नहीं किया। वो चढ़ाते हुए आए हैं इसलिए चढ़ाना होता है। ऐसा ही किया ना? सोचो, अब जब आप रोज मंदिर जाते हैं कितने सावधान रहते हैं अपनी क्रियाओं के प्रति। मान को चलो गए भी, दर्शन भी कर रहे हैं, मन में ये क्वेश्चन नहीं उठता कि मैं दर्शन क्यों कर रहा हूँ, बस कल किया था इसलिए आज भी कर रहा हूँ, और बस करके जाना है, 2 मिनट का समय है, करके निकल गए। ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वहाँ पर कैसे रहना चाहिए और क्या विचार करना चाहिए ये भी सीखना पड़ेगा कि नहीं? ये भी सीखना पड़ेगा। ये भी सम्यक ज्ञान है कि नहीं? सम्यक ज्ञान है। तो आप जब रोज मंदिर में जाते हैं, घर से निकलने से पहले ही ये विचार करना चाहिए कि मंदिर क्यों जाना है, किस उद्देश्य से जा रहा हूँ, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं जा रहा हूँ, ये विचार करके जाना चाहिए। क्या विचार करोगे महाराज? जो आप कहोगे। और फिर मैं जितना कहूंगा उतना ही करोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे, तो वो भी मशीन के समान हो गया, चाबी जितना दे दी मशीन उतनी चला। ऐसा भी नहीं होना। चिंतन क्या करोगी, बोलो क्या करना चाहिए? घर से मंदिर आ रहे हैं तो क्या चिंतन करके मंदिर आना है? भगवान के अंदर जो गुण है उन गुणों की प्राप्ति के लिए और उनके गुणों को कुछ ले करके अपनी जोर झोली भरने के लिए जाना है, तो जाकर के भगवान के पास निवेदन करो, भगवान हमारी झोली में तो कुछ भी नहीं है, आपके गुण इसमें थोड़ा सा डाल दो। डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो गुणों की प्राप्ति के लिए भी हम मंदिर कैसे जाएं? गुण तो डालने वाले नहीं, अपनी झोली भरने वाले नहीं। भगवान से ये कहो, भगवान कम से कम सम्यक दर्शन आपका हमको दे दो, कल्याण कर लेंगे हम। क्या देंगे भगवान? नहीं देंगे। भगवान सम्यक दर्शन नहीं देते तो मत देओ, लेकिन ये जो भौतिक सुख जीने की जो सामग्री है, 10 प्रकार के परिग्रह हैं, धन संपत्ति आदि है, इसको हमारी झोली में डाल दो। तो भगवान कहते मेरे पास ही नहीं, तुझे कहाँ डाल दूं? मैंने तो छोड़ दिया, ये पाप है कह करके मैंने तो छोड़ करके आया, और आपके लिए ये संपत्ति धन संपत्ति इत्यादि कहाँ से दूं? तो वो भी नहीं मिलने वाला है। और किसी से मांगो, किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी देवता से मांगो कि हमारी झोली में कुछ धन संपत्ति डालो, डालेगा क्या? वो भी नहीं डालेंगे। तो क्यों जा रहे हैं मंदिर, ये तो सोचना पड़ेगा। फिर गंभीर प्रश्न आया सामने, अच्छा मंदिर में जाने से हमारी पाप प्रवृत्ति कम होती है, जाने मात्र से होगी क्या संकल्प से होगा? तो ये तो मंदिर गए बिना भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। भगवान की, भगवान को देखने के बाद हमारा शुभ में परिवर्तन होता है, ठीक है। देखने मात्र से शुभ में परिवर्तन हो जाए तो हमने हजारों लाखों बार देखा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? कितनी बार दर्शन किया है? आप जब छोटे थे, आपकी आपके माँ बाप ने हाथ पकड़ करके, सिर पकड़ करके झुकाया भी, दिखाया भी, उस समय क्यों नहीं हुआ? उस समय हम समझदार नहीं थे, माँ बाप ने तो संस्कार डालने का प्रयास किया था कि ये रोज मंदिर जाने लग जाए, बस इतना ही रास्ते पर लगाया था, धर्म नहीं दिलाया था। धर्म तो आपके पुरुषार्थ के द्वारा आने वाला है, सोच समझ करके करने पर वो जागृत होगा धर्म। माता पिताओं ने छोटा सा काम किया था, मंदिर के बिना इसका हित नहीं होगा, इसलिए मंदिर तक लाने का प्रयास किया। पर मंदिर में जाकर यदि हम दर्शन भी करते हैं तो दर्शन से यदि हमारा हित होता है तो आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ है? नहीं हुआ। क्यों हुआ? नहीं हुआ, बोलो क्या कमी रही इसके बावजूद भी? नहीं, सबसे बड़ी कमी ये रही, मंदिर गए लेकिन हमारे पास सम्यक ज्ञान नहीं था, क्या मांगे और क्या ना मांगे, क्या विचार करे क्या ना करे, भगवान के सामने खड़े होकर क्या चिंतन करे, इस पद्धति का ज्ञान हमको था ही नहीं। न माँ बाप ने सिखाया, न किसी के पास सीखने का हमने प्रयास किया। अब ये प्रयास तो पहली बार हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? भगवान से क्या मांगना, धन संपत्ति मांगोगे? भगवान नहीं दे सकते, भगवान नहीं दे सकते, नहीं सही, किसी देव से मांग लो वो दे देंगे, उनसे मांगो वो कुछ देंगे। मंदिर से खाली नहीं आना, किसी न किसी से थोड़ा धन थोड़ी संपत्ति लेकर के ही लौटना। खाली क्यों जाएं, हम मंदिर आए हैं, हमारे चावल व्यस्त हो जाएंगे। पूजन सामग्री की कीमत है क्या? नहीं है, 5 रुपए के वो सामान है चढ़ा रहे हैं वहाँ, तो व्यस्त नहीं जाना चाहिए। 5 रुपए देना चाहिए और 5,000 लाना चाहिए घर, ये आपका स्वार्थ है। तो किसी देवी देवता से मांग करके देख लो, देंगे क्या? 5 रुपए देने पर अगर 5,000 मिलता है तो किसको नहीं चाहिए देवी देवता। और ऐसी यदि ये सत्य होता कि देवी देवता हमको सुख देते हैं, या अरहंत भगवान हमको सुख देते हैं, या कोई गुरु सुख देते हैं, कोई मंत्र तंत्र हमारे लिए सुख देता है, ये बातें यदि सत्य होती तो आज तक हम सावकार होते। कभी किसी गुरु के पास गए, मंत्र ले लिया, 5 रुपए दे दिया, 5,000 वहां से लाए। कभी किसी क्षेत्र पर गए, औरंगाबाद गए, कौन से बाबा? कचनेर वाले बाबा, हाँ कचनेर वाले, हाँ औरंगाबाद यानी कचनेर, कचनेर गए और कचनेर बाबा से मांगा, 5 रुपए दे दिया, 5,000 ले आए, 10,000 हो गए, चलेगा आपका जीवन? रो 10,000 हो गए, गुरु से 5,000 मिले, कचनेर बाबा से भी 5,000 मिले, और किसी देवी देवता के पास और जाओ, देव के पास जाओ पहले, उनको 5 देना, 5,000 लेना, देवी के पास जाओ, 5,000 देना, 5 रुपए देना, 5,000 लेना, कितने रुपए हो गए? पेट भर गया कि नहीं? धन संपत्ति कोई देवी देवता देता है या नहीं, इसका भी हमने विचार नहीं किया है। बस लोग मांगते हैं इसलिए उनके पीछे पीछे जाकर हम भी मांग करके आते हैं। हम रूढ़िवादी थे, और रूढ़िवाद कब आता है अपने जीवन में? जब अज्ञान होता है तो रूढ़िवाद भी पनपता है, और रूढ़िवाद से, अज्ञान से आत्मा का हित होगा नुकसान होगा, क्या फायदा होगा? नुकसान होगा, नुकसान ही नुकसान है, ऐसे नुकसान का ही काम करते चले आ रहे हैं। सोचा ही नहीं क्या है क्या नहीं, सोचा नहीं, विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, बस करते चले आ रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। उसको ओल्ड इज गोल्ड, हाँ इस भी उपमा दे करके उसको, हमारी ओल्ड पद्धतियाँ, ओल्ड मांग, ओल्ड क्रियाएं, ये सभी गोल्ड हैं कह करके, गोल्ड के समान सुरक्षित रख करके चले आ रहे हैं। कितना बड़ा अज्ञान है, और यही अज्ञान हमारे लिए नुकसानदायक है। इसी को मूढ़ता भी कहते हैं, भगवान कहते हैं ये मूढ़ता है, मूढ़ता यानी अज्ञानता, अज्ञानता। हमारे पास जो अनादिकाल से ज्ञान रहा वो सब अज्ञान वाला ज्ञान रहा, अज्ञान वाला ज्ञान, सोच समझ करके हमने कोई क्रिया नहीं की, ये ज्ञान अज्ञान कहलाता है, ये रहा है हमारे पास। इसलिए ज्ञान जरूरी है अपने जीवन में। अपन मोक्ष मार्ग पर चले या न चले अपनी स्वतंत्र बात है, लेकिन ज्ञान तो हो। ज्ञान रूपी संपत्ति होने से कोई नुकसान है क्या है? ज्ञान को लेने से यदि हम प्रमादी बन जाएं, या ज्ञान को लेने से विकल्पित हो जाएं कि ज्ञान आएगा तो मुझे करना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम है? नहीं। ज्ञान आ जाए तो मुझे संसार छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नियम है क्या? ज्ञान आने पर भी कोई संसार नहीं छोड़ता, और ज्ञान न होने पर भी ज्ञान को लेकर के कोई संसार छोड़ता है? संसार छोड़ने का मतलब क्या? घर बार छोड़ना ऐसा नहीं। संसार छोड़ने का मतलब अपने अज्ञान के मार्ग को छोड़ना, यही संसार है। अज्ञान ही संसार है। ज्ञान मोक्ष है, ज्ञान सुख है, ज्ञान आनंद है। ज्ञान को रखना और अज्ञान को छोड़ना, यही नहीं हुआ है अनादिकाल से। क्या बता रहा था? भगवान से क्या मांगना? तो भगवान से इतना मांगना, कितना? जो मैं जितना कहता हूं उतना। मशीन भी नहीं बनना, विचार करना उस पर। हाँ, जितनी महाराज ने चाबी दे दी उतना ही काम करना। मशीन वत भी नहीं बनना है। भगवान के पास जाओ, किस उद्देश्य से जाओ पहले घर से ही सोचो। मेरी आत्मा को परमात्मा बनाना है, और मेरी आत्मा परमात्मा बनने के लिए कर्मों का जो निरंतर बंध चल रहा है, ये गलत भावों से चल रहा है। हमको धर्म का ज्ञान नहीं है, हमको कुछ भी ज्ञान नहीं है धर्म के संबंध में। हे क्या है, उपादे क्या है, कुछ भी मैं नहीं जानता। इसलिए मैं नहीं जानता हूँ तो अब मैं जानने लग गया। क्यों? क्योंकि अभी शिविर लगा, सम्यक ज्ञान शिविर लगा, उसमें बहुत गहराई से मुझे ज्ञान हुआ। कौन सी बात किस प्रकार करना चाहिए ये पता चल गया है मुझे। इस प्रकार का हेयोपादे का ज्ञान तो मुझे आ गया है। आने के उपरांत मुझे किन भावों से घर से निकलना चाहिए, समय दे दो उसको, सोचने के लिए जरा समय दे दो। मैं मंदिर क्यों जा रहा हूँ, पहला प्रश्न उठाओ, फिर मंदिर जाओ। मैं भगवान बनना चाहता हूँ, भगवान बनने का साधन है मंदिर। मंदिर में जाने मात्र से भगवान नहीं बनूंगा, लेकिन धीरे धीरे बनूंगा। कैसे? मंदिर जाऊंगा तो कर्मों का संवर होगा क्या नहीं होगा? होगा, अवश्य होगा। पुण्य कर्म का बंद होगा क्या नहीं होगा? अवश्य होगा। भावों की विशुद्धि बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और उस विशुद्ध परिणामों से पूर्व कर्म की निर्जरा होगी क्या नहीं होगी? होगी। विश्वास है? विश्वास है? पक्का विश्वास है क्या कच्चा विश्वास है? पक्का विश्वास है। तो इस उद्देश्य से जाओ, मुझे भगवान के पास जाकर घंटा आध घंटा वहां बैठकर पूजन करना है, भक्ति करना है, आरती करना है। इन क्रियाओं के माध्यम से मेरी आत्मा के परिणाम पवित्र हो, और उससे कर्म की निर्जरा हो, कर्म का संवर हो, होता है ये गारंटी है। पर इसी उद्देश्य पूर्वक मैं जाऊंगा, अपने मन की निर्मलता को बढ़ाने के लिए जाऊंगा। बस एक ही सेंटेंस। अपने मलिन मन को, जो अशुभ में रच पच गया है, अपने मलिन मन को पवित्र करने के लिए मैं मंदिर जाऊंगा। इस उद्देश्य से जाऊं। सुन रहे हैं ना? सुन रहे? क्यों जाना? सुन रहे? हाँ। मंदिर क्यों जाना? मन को पवित्र बनाने के लिए। कैसे जाना? ऊँगते ऊँगते नहीं जाना, फ्रेश होकर के जाना। हाँ, मैं जा रहा हूँ, रूढ़ीवाद से नहीं जाना, कल भी गया था परसों भी गया था, जब से मैंने जन्म ले लिया तब से माता पिताओं ने सिखाया, तब से अब तक जा रहा हूँ, जाना पड़ता है, नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा सोच के नहीं जाना। फिर रूढ़ीवादी बनना है क्या? मंदिर को भी रूढ़ीवाद के रूप में लोगे क्या? है? रोज जाता हूं इसलिए जाना पड़ता है, ऐसा क्या कर जाओगे? अपन क्या मशीन है क्या? ऐसा कल के दिन मालिक ने मुझे मंदिर ले गए था इसलिए आज भी मुझे जाना पड़ेगा, मशीन नहीं अपन। सोच के जाना है, धर्म करने के लिए मंदिर जाना है। धर्म क्या है? कर्म का संवर करना धर्म है, मन को निर्मल रखना धर्म है। देखो धर्म की परिभाषा कितनी सारी मैं बता रहा हूं, अशुभ विचार नहीं करना धर्म है, मन को सदा निर्मल रखना धर्म है, कर्मों का संवर करना धर्म है, कर्म की निर्जरा करना धर्म है। इसी उद्देश्य से मंदिर जाना धर्म है, इन्हीं बातों को उद्देश्य बनाकर मंदिर जाना भी धर्म है। उद्देश्यहीन होकर मंदिर जाना अधर्म है, उद्देश्यहीन होकर अज्ञान से मंदिर जाना अधर्म है। यही तो बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक में अपन ठोस हो गए तो धर्म की शुरुआत होती है। बेसिक ही ठोस नहीं है तो धर्म कर ही नहीं पाएंगे, करेंगे भी तो रूखा सूखा करेंगे, जैसा भी करते आए हैं करते जा रहे हैं ढकेलते जा रहे हैं, अंत में क्या निकला? हरा भरा, एक कोई हमको सुख मिलना चाहिए था, प्रसन्नता देने वाला, वो नहीं मिला। नहीं मिला तो फिर किए क्यों? टाइम वेस्ट, चावल वेस्ट। ऐसा क्यों, ऐसा धर्म क्यों कर रहे हैं जिसमें सारा व्यर्थ रूप में जा रहा हो? ऐसा धर्म नहीं करना। क्या बता रहा था? धर्म कैसा करना? तो धर्म ऐसा करना जैसा हम बता रहे हैं, और भी आप खोजबीन करके करना, जो भी अच्छा हो उसको खोजबीन कर, मैंने जितना कहा उतना ही नहीं करना, जो खोजबीन करो, चिंतन करो, मनन करो, उसमें जो अच्छा लगे उसको करते जाओ। सबसे पहले ये सावधानी रखना है, आत्मा को पवित्र करने के लिए, आत्मा के मन के मलिनता को दूर करने के लिए, कषाय को दूर करने के लिए, क्रोध को दूर करने के लिए, मान को दूर करने के लिए जा रहे हैं, माया को, लोभ को दूर करने के लिए जा रहे हैं, तो इस उद्देश्य से तो जाओ। लेकिन इस उद्देश्य से यदि आप जाएंगे, क्या भगवान से धन संपत्ति की कामना करेंगे? अगर मान लो आपको शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया है, कोई व्याधि हो गई है, उसको ठीक करने के लिए क्या निवेदन करोगे भगवान से? भगवान ठीक करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो किस लिए मंदिर गए हैं? क्यों गए हैं? मन के मैल को दूर करने के लिए, मन की पवित्रता के लिए गए हैं। मन की पवित्रता अगर हो गई तो ध्यान रखना इससे हजार काम सद जाएंगे। पुण्य नहीं आएगा क्या? आएगा। और पाप के उदय में जो हमारे शरीर में रोग हो गया है वो रोग दूर नहीं होगा क्या? पुण्य अगर आया है तो होगा। फिर शरीर को ध्येय बना करके जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे को रोग है इसलिए इसको ठीक करना है इसलिए हम मंदिर जा रहे हैं। मंदिर दवाखाना बनोगे, उसको दवाखाना बनाओगे? मंदिर कोई दवाखाना नहीं है। दवा नहीं खाना वहां जाकर के, दवा खाना, दवा नहीं खाना, गम खाना, विचार करके जाना, जल्दबाजी नहीं करना, गम खाना थोड़ा, सावधानी से जाना, मंदिर जाना, मन की पवित्रता के लिए जाना। मन की पवित्रता अगर बन गई है, मन की आशाएं दूर हो गई, मन की इच्छाएं दूर हो गई, मन की मन का कषाय दूर हो गया, क्रोध मान माया लोभ न करते हुए मंदिर गए, और ऐसा यदि आप वहां पर जाकर के अपने आपके मन को पवित्र पाते हैं, तो इससे हजार काम ऑटोमेटिक होते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख, बिन मांगे मोती मिले, हजार काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आपको क्या चाहिए, धन की कमी है क्या? धन की कमी है तो धन को कम होने नहीं देगा वो, पुण्य आया है ना, किस वजह से आया? मन की पवित्रता से आया। और पाप धुला है क्या? नहीं धुल गया है। जो हमारे शरीर में रोग पैदा कर रहा था, जो हमारे जीवन को दरिद्र बना रहा था, वो पाप कर्म था। कोई बाहर के देव आदि नहीं थे, कोई अरहंत आदि, देव आदि, गुरु आदि, मंत्र तंत्र आदि दरिद्र बनाते, ऐसा नहीं, न सुखी बनाते हैं, न दरिद्र बनाते हैं, ये सत्य है। जीवन की सत्यता को समझ के जीवन जीवो, तो ये जीवन की सत्यता हमारे जीवन में जागृत हो सकती है। समय हो गया, सब आज से आपका जीवन शुरू होना चाहिए। शुरू करोगे ना तो करोगे, मेरे कहने से कम शुरू करो। मशीन जैसे शुरू करते हैं ना, वैसे तो कम से कम शुरू करो। हम बोलो, हम मंदिर मन की विशुद्धि बढ़ाने के लिए जाएंगे, इससे कर्म अपने आप धुल जाएंगे, इससे पुण्य अपने आप बढ़ेगा, हम अपने आप ऑटोमेटिक ही धन से संपन्न बनेंगे। दरिद्रता हो तो दरिद्रता दूर निश्चित होगी, निश्चित होगी कि नहीं होगी, ये विश्वास है कि नहीं? मन को पवित्र रखने से सब कुछ होता है कि नहीं होता है, ये विश्वास आ गया। ऐसा ही काम करना है और इसी उद्देश्य से जाना है। भगवान को देख करके अपने भावों को विशुद्ध और बढ़ाओ, उत्साहित रखना चाहिए अपने मन को। मंदिर में जाने के बाद हतोत्साह नहीं रखना, तो ये है। बस बस जिनवानी हो गई, जिनवानी के बाद काय सर करके जाना है। हाँ, खड़े हो जाएं, जिनवानी करके प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी जय वंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांद रहे अब ना हम विषयांद रहे। कायोत्सर्ग।